Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, दूसरों पर नियंत्रण प्राप्त करना तो हमारे बस में नहीं है। तो हमारे बस में क्या है? हमारे बस में यह है कि हम अपने खुद पर नियंत्रण प्राप्त करें। जब आप खुद के कंट्रोल में रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके आसपास भी सब कुछ सही चलेगा। तो खुद पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए और स्ट्रेस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आज हमारे साथ है साइकोथेरेपिस्ट गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
ओम,
वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमने सेल्फ एस्टीम के बारे में पिछले एपिसोड में बात की थी, और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं?
एक प्रैक्टिकल टेक्निक है
जिसको
हम सब कर सकते हैं, नहीं? हमारे दर्शक भी ये कर सकते हैं, और ये टेक्निक को एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपको करनी है। एक छोटी सी एक्टिविटी है कि जो आपको अच्छे से जानता है, भी बहुत समय से वह व्यक्ति आपको जानता है
जी।
जैसे हमारे क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं,
कोई
कलीग्स हो सकते हैं कि जो हमको बहुत सालों से जानते हैं
जी।
और अभी ये एक्टिविटी में ये करना है कि पहले हमें अपनी सारी कमियां लिखनी है,
ठीक है?
अपने हमारे अपने जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो सारे हमें लिखने हैं
जी।
आपका पार्टनर भी वही करेगा,
ठीक है,
कि वह अपने सारे नेगेटिव पॉइंट लिखेगा, और फिर अब आपको अपने पार्टनर के पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं,
ओके,
क्योंकि आप उनको जानते हैं कि उनमें क्या क्या पॉजिटिविटी है। आपका पार्टनर भी आपके सारे
पॉजिटिव
पॉइंट्स लिखेगा,
ठीक है?
और अब एक अच्छे से करना चाहिए, छोटा नहीं, कि भी कम से कम 20-20 बातें लिखो, कि 20 नेगेटिव पॉइंट, 20 पॉजिटिव पॉइंट, छोटा छोटा भी ढूंढो। और फिर अगर आप अब ये दो को कंपेयर करेंगे तो 100% आप ये पाएंगे कि जिस चीज को आप अपनी वीकनेस समझते हो, आपका पार्टनर उसी को स्ट्रेंथ समझता है, उसी को आपकी एक शक्ति समझता है।
ओह वाओ।
पर वो भाषा डिफरेंट हो सकती है। हमने कई बार देखा, जैसे कंपनी में मैंने कराया तो एक मैनेजर ने लिखा कि भी मैं गुस्से वाला हूँ
जी,
ना, वो मेरी वीकनेस है
जी।
तो उसके पार्टनर ने लिखा कि ही हैज अ डैशिंग पर्सनैलिटी, जहां भी जाता है वो काम करके आता है। तो वही जो बात है, वो वीकनेस कैन बी योर स्ट्रेंथ आल्सो,
करेक्ट?
सो नो, भल बेबी गुस्सा को कंटिन्यू करना इसी बात नहीं, उसको हमें मैनेज करना है, बट दैट कैन बी अ फोर्स विच मेक्स यू गुड आल्सो,
करेक्ट?
तो हमें ये सोचना चाहिए कि भी वीकनेस जैसी कोई चीज है ही नहीं, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रेंथ। और एक है ना, हॉस्पिटल में हमने किया
जी,
तो एक सर्जन ने लिखा कि आई एम वेरी सबमिसिव, कि कोई भी मुझे कुछ बोल सकता है, आई एम सबमिसिव ऑल्दो आई एम अ वेरी गुड सर्जन। लेकिन उसने पार्टनर ने लिखा कि इसमें बहुत नम्रता है, इसके जैसा नम्र व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा।
क्या बात
है, द सेम थिंग इज स्ट्रेंथ ऑल्सो,
एग्जैक्टली।
तो एग्जैक्टली ना, हाउ वी व्यू इज इम्पोर्टेंट,
ओके। हमारा विजन किसी चीज के प्रति अगर जैसा होगा, वो डिसाइड करता है कि क्या उसके रिजल्ट निकलेंगे।
नहीं, या तो भल वीकनेस को चेंज करना, ऐसा नहीं कहेंगे कि वीकनेस को नहीं बदलना है, लेकिन वीकनेस को अगर ठीक प्रकार से आप यूज करो तो वो आपकी शक्ति भी बन जाता है। विनम्रता तो अच्छी चीज है,
करेक्ट,
डैशिंग पर्सनालिटी इज अ गुड थिंग,
करेक्ट।
ओनली थिंग कि अभी वो जो वीकनेस जहां आपको तकलीफ देती है उसको दूर करो,
करेक्ट।
जैसे कि जो व्यक्ति गुस्से वाला था, वो अगर ये समझे कि भी अभी ये जब मैं होता हूं तो ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया कि इसको बहुत बुरा लग गया, वो गलत है,
करेक्ट।
वहां पर मुझे अंडरस्टैंडिंग से बोलना है,
करेक्ट,
है ना, पहले प्रशंसा करनी है, फिर चाहे तो उसकी कुछ कमी भी बतानी है। जैसे जो भी उसमें चेंज लाना है वो चेंज लाए, है ना, तो वह पॉजिटिव है
जी।
जैसे अभी ये जो सर्जन जो कहते कि मैं सबमिसिव हूं, वो स्ट्रेंथ भी है, परंतु अभी वो सर्जन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई मेरा गलत फायदा ना ले करके जाए। जैसे सबमिसिव व्यक्ति है तो कोई उसे कुछ भी काम करा लेगा, अपना स्वार्थ देख लेगा और फिर उसको छोड़ देगा। तो ऐसा अगर कोई कुछ कर रहा है तो उनको ना बोलना भी सीखना है,
करेक्ट,
जब ये देखे कि गलत कर रहा है, तो तो बस इस प्रकार अगर हम देखें तो देर इज नो वीकनेस, देर आर देर इज अ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ ओनली इन अवर लाइफ.
वाओ, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस. अब जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम वीकनेस की ओर बढ़ने लगते हैं. तो भले मैं कितनी भी स्ट्रांग व्यक्ति हूँ, मेरा खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, लेकिन मैं भी एक ऐसे सिचुएशन में आ सकती हूँ जिसमें मैं पूरी तरीके से ड्रेन डाउन हो सकती हूँ. तो ये सिचुएशन में क्या किया जाए? जो व्यक्ति का सेल्फ एस्टीम हमेशा से अच्छा था वो उतने ही जल्दी चकनाचूर भी होता है अगर गलती से भी उन्हें ब्रेकडाउन हुआ तो. तो ऐसे ब्रेकडाउन के वक्त क्या किया जाए?
एक असफलता है लेकिन दूसरी छह सफलताएं भी थी.
ओके.
उल्टा तो वे ऐसा कहते हैं कि भी आप भले छह बार असफल हुए लेकिन एक बार भी सफल हुए तो यू आर गुड.
सही बात है.
जैसे कहा गया है कि भी गिरने में असफलता नहीं है लेकिन हर बार आप गिरो नहीं उठने में असफलता है.
क्या बात है,
है ना? तो ऐसे में एक्सेप्ट कर, हम अपना ही देखें कि भी आगे तो मैं 5 बार 6 बार सफल हुआ था, एक ही है ना, तो इट इज नथिंग.
करेक्ट.
मे बी उससे मैंने बहुत बड़ा लेसन सीखा, ये दोबारा बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, परंतु उससे मैं कोई बेकार नहीं हूं. भले कोई कहता भी है, शायद कोई कहे भी कि तुम बेकार के वैसे हो, तो सोचो भी वो तो एक एनिमी के रूप में मुझे बोल रहा है, बट आई एम रियली गुड.
करेक्ट
ना. तो वो और ईगो में और सेल्फ एस्टीम में फर्क है, है ना. आज कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारा अहंकार आ जाएगा.
करेक्ट,
है ना. परंतु अहंकार बुरा है. अहंकार क्या करता है? एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करता है.
जी.
जब एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होती है तो हमको तनाव आता है.
करेक्ट.
लेकिन स्वमान जो है वो तो एक्सपेक्टेशन चाहता ही नहीं कि मैं अच्छा हूं. हो सकता है कि 5 लोग मुझे अप्रिशिएट करते, 5 लोग मेरी गलतियां निकालते, स्टिल आई एम गुड.
करेक्ट.
कि ना अहंकार वाला हर बार चाहेगा कि सब 10 में से 10 सबको मेरे बारे में अच्छा बोलना चाहिए. एक ने भी बुरा बोला तो डाउन हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिप्रेस्ड भी हो जाएगा.
करेक्ट.
तो अहंकार बिल्कुल नहीं रखना है, परंतु स्वमान को जरूर बढ़ाना है.
जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं हम खुशी की. कई बार ऐसा होता है कि खुशी हमारी गायब होने लगती है जब स्ट्रेस आता है. क्योंकि उस जिस क्षण हम स्ट्रेसफुल होते हैं, हमारे या तो हम रो रहे होते हैं या हम टेंशन ले रहे होते हैं, तो खुशी को बरकरार कैसे रखा जाए? क्योंकि जिंदगी में खुशी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, है ना. तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए जब हमारी खुशी जाने लगे?
यहाँ भी मूल बात वही आती है कि खुशी को ना कोई चीज पर हम डिपेंडेंट ना बनाए.
अच्छा. ओके.
माय हैप्पीनेस दैट आई एम अ हैप्पी सोल और आई एम अ हैप्पी बीइंग, वो मेरी खुशी किसी ने अप्रिशिएट किया इसलिए मैं खुश हूं ऐसा नहीं है. मुझे सफलता मिली इसलिए मैं खुश हूं ऐसा नहीं है. मुझे प्रमोशन मिला इसलिए मैं खुश हूं या नहीं है. कि मेरी खुशी कोई भी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंडेंट नहीं है. दिस इज माई इनर स्टेट और वो सदा के लिए है.
okay.
Irrespective of external things, ना बाह्य वातावरण कैसा भी हो, लेकिन मैं अंदर में खुश हूं.
बहुत अच्छा.
और दूसरी एक बात इससे ला सकते हैं, कहते सफलता के लिए भी जरूरी होता है कि आज आपको जो कुछ भी प्राप्त है जहां भी हो खुश रहो. बल गोल बहुत ऊंचा रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि भई हम खुश है, हम संतुष्ट है तो मैं आगे नहीं बढ़ना. आगे आपको सचमुच बहुत करना है. लेकिन आज जहां हो वहां आप संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, तभी कुछ अच्छा कर सकेंगे. नहीं तो आप अच्छा कर ही नहीं पाएंगे. अच्छा करने के जो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, इंट्यूशन चाहिए, वो सब के लिए भी खुश रहना जरूरी है.
डॉक्टर साहब, हम ये तो समझ गए कि हमें सेल्फ एस्टीम को बरकरार रखना है अगर हमें खुश रहना है तो. लेकिन मेरे आसपास के जो रिलेशनशिप्स है, शायद मेरे बच्चे, शायद मेरे ऑफिस में कोई मेरा कलीग हो, कोई भी हो सकता है, उसके अगर सेल्फ एस्टीम लो है तो हम उसको कैसे बढ़ाएं, अर्थात दूसरों के सेल्फ एस्टीम को कैसे बढ़ाएं?
ग्रेट ग्रेट. एक एग्जांपल से मैं आपको देखो कन्विंस करता हूँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. हमें अपनी तो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना ही है, लेकिन औरों की भी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने में मदद करनी है.
हाँ जी.
जिग जिगलर बहुत ही अच्छे सेल्स ट्रेनर है.
ओके.
है ना, कि जो सेल्स ट्रेनिंग के लिए उनको बहुत पैसे दिए जाते हैं. और उन्होंने अपना करियर भी एक सेल्समैन के रूप में शुरू किया था।
ओके।
और उनकी एक किताब है सी योर सेल्फ ऑन द टॉप, जिसमें वो लिखते हैं कि भी मैं एक फेल्ड सेल्समैन था। मैं समझता था कि मैं अच्छा सेल्समैन नहीं हूं, मैं कभी अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता हूं। लेकिन कहते कि घटना हुई कि एक बार एक मीटिंग थी, उसमें एक बड़े ही सीनियर मैनेजर ने उनको अपने पास बुलाया
जी।
और उसके कंधे पे हाथ रख करके कहा, यंग ज़िगलर, मैं देखता हूं कि तुम्हारे में बहुत काबिलियत है, है ना, तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है, तुम्हारा वॉइस कितना अच्छा है ना, तुम हमारे देश के सबसे अच्छे सेल्समैन बन सकते हो, ऐसे ऐसे गुण आप में है। ज़िग ज़िगलर लिखते हैं कि भी उसके बाद और कुछ चेंज नहीं हुआ। मैंने कोई सेल्स की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं ली, ना मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोई ट्रेनिंग ली, लेकिन थोड़े ही दिनों में मैं अच्छा सेल्समैन बन गया।
अरे
क्यों? क्योंकि उस घटना के बाद जाने अनजाने कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली मैंने हजारों बार सोचा कि अरे वाह, इतने बड़े सीनियर व्यक्ति मुझे कहते कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, नहीं मेरा वॉइस अच्छा है, तो डेफिनेटली मेरा वॉइस अच्छा ही होना चाहिए, वो क्यों कहेगा। तो फिर मैं कॉन्फिडेंस से अपना काम करने लगा, मैं सेल्फ एस्टीम से अपना काम करने लगा। और क्योंकि पहले मुझे अपने में डाउट था कि शायद कोई मेरी चीज खरीदेगा नहीं,
करेक्ट,
शायद मेरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन अब ऑटोमेटिक वो चला गया कि यू नो माय एक्सप्लेनेशन इज गुड, आई एम एक्सप्लेनिंग इन नाइस वे, माय वॉइस इज गुड, तो आई वाज गुड सेल्समैन,
करेक्ट,
एंड दिस एवरीबॉडी शुड डू। एक्चुअली कहते हैं बाइबल में भी लिखा गया है कि मृत्यु के बाद भगवान को आपको जवाब देना पड़ेगा कि एक एक अच्छी चीजें जो आप बोल सकते थे आपने क्यों नहीं बोली। तो इसलिए हमारे आसपास जो लोग भी है, सचमुच हमें हर मौका ढूंढना चाहिए कि उनको कुछ हम अच्छी बात कहे।
okay.
सिर्फ वो रियलिटी में होना चाहिए,
करेक्ट,
आप कुछ आप कहते हैं थोड़ा, हाँ वो 10% भी है, भले उसको आपने 50% बना दिया, बस वो थोड़ा सा 10% होना चाहिए, और नहीं अच्छी बात है तो उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी।
करेक्ट। तो आसपास के लोगों को अगर सेल्फ एस्टीम बढ़ाना है तो हमें ये एफर्ट्स लेने की जरूरत है, वो खुद कर भी कर पाए या ना कर पाए, हम अगर उन्हें मदद करेंगे तो ऑटोमेटिकली हाँ, वो और बूस्टअप हो जाएंगे।
और वो ऑटोमेटिक है ना, उन्हें खुद तो वर्क करना पड़ेगा। और जब आप नेचुरल वे में कहते हैं, वो रियल लगना चाहिए,
करेक्ट,
क्योंकि नहीं व्यक्ति भी समझ जाता है कि मुझे सचमुच ही झाड़ पे नहीं झूठ मूठी झाड़ पे चढ़ा रहा है। उसको समझ में आ जाता है
जी।
है ना, तो वो हम जो भी कहे ना उसमें सिंसियरिटी होनी चाहिए, रियलिटी होनी चाहिए
जी।
तब उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी।
डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की या फिर बात करते हैं स्ट्रेस की, मेजरली अगर हम बात करें तो स्ट्रेस का रूट कॉज क्या है, क्योंकि अगर कॉज पता चल जाए तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कि और कैसे करना है वो भी शायद जान जाएंगे। तो वो रूट कॉज क्या है स्ट्रेस का, उसके बारे में कुछ बताइए।
वंडरफुल। हाँ, कि विनी आज हम जो कुछ भी है
जी,
मैंने मनोविज्ञान को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, इसे हाँ तो कॉम्प्लिकेटेड बात है, परंतु जो भी आज हमारे में पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी है, आप में गुण है अवगुण है, उसके पीछे फाउंडेशन में एक चीज होती है
जी।
या तो ये कहेंगे कि आज हमारा व्यक्तित्व, हमारा मन, हमारी भावनाएं एक झाड़ की तरह है। झाड़ में कैसे एक डाली से 3 डालियां निकलती है, फिर एक से दूसरी 5 निकलती है, तो ऐसे हमारे जीवन में भी कुछ एक ऐसी बातें होती है और उसको हमने इतना इमोशनली सोचा होता है, उसे बार बार रिपीटेडली इमोशनली हमने सोचा होता है, और फिर वह एक कहेंगे कि सेंटर के रूप में वहां बन जाता है, और उसी से फिर और डालियां भी निकलती है। उसमें आप में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नहीं, कुछ उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट कर सकेंगे। एक लड़की मेरे पास आई कि जो इंजीनियरिंग के 5वें सेमेस्टर में वो 4 बार फेल हुई थी। उससे पहले एकदम ब्राइट लड़की थी, लोगों को भी आश्चर्य होता था, उसकी मदर खुद टीचर थी तो ज्यादा आश्चर्य होता था,
correct,
कि ये लड़की इतनी ब्राइट थी अचानक क्यों फेल होने लगी। चार पांच सेशन के बाद यह पता चला, उसने खुद कहा कि नो वन अंडरस्टैंड्स मी।
ओके,
तो ये एक जो एक न्यूक्लियस सेंटर वहां बन गया कि मुझे कोई समझता नहीं है, और मुझे कोई समझता नहीं है तो फिर जीवन अच्छा नहीं है। गुस्सा करना पड़ेगा। वो कंफ्यूज हो गई, पढ़ नहीं पाती थी, जब आती थी ना तो ठीक से तैयार होके भी नहीं आएगी कि भी जिससे मैं अच्छी नहीं हूं ना, ये सब था। तो अब तो जब कॉज मालूम पड़ा तो फिर उस पर हमने काम किया, अलग अलग रीति से उसको बताया, नहीं कई चीजें पूछे भी कि भी फैमिली में क्या है। उसकी एक छोटी बहन थी। तो उसको ये लगता था कि छोटी बहन को सब इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको सभी सब समझते हैं, मुझे नहीं समझते हैं। तो मैंने और भी बहुत सारी बातें बताई, परंतु एक चीज ने उस पर असर कर दी। उसने खुद कहा कि हाँ दिस इज वंडरफुल
जी,
कि बात बात में उसको पूछा कि भी आप कितना खर्चा करते हैं, क्या है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मेरी माँ ने मुझे ATM कार्ड दे दिया है। एनी टाइम आई कैन विड्रॉ एनी मनी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो फिर मैंने उसे पूछा कि तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स को उनके मदर्स ने ATM कार्ड दिया है। तो कहते एक भी नहीं। फिर मैं उसको कन्विंस किया, देखो कि भाई तुम्हारी माँ तुम्हें इतना ट्रस्ट करती है, भी दूसरों की मदर्स इतना ट्रस्ट नहीं करती है, इसलिए वो गिनती करके पैसे देती होगी।
करेक्ट,
तुम्हारे पास तो इमरजेंसी में जितने भी पैसे निकालने हो तुम बैंक से निकाल सकती हो।
करेक्ट,
तो नो शी ट्रस्ट्स यू, नो शी हैज फेथ इन यू।
करेक्ट,
कभी हो सकता है तुमको कुछ कहा, बिकॉज एज अ टीचर मे बी शी हैज लिटिल हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू।
करेक्ट,
है ना, और उसको ये समझाए कि उल्टा अच्छा समझो कि भी बिकॉज मदर हैज लिटिल हाई एक्सपेक्टेशन यू विल अचीव मोर थिंग्स इन योर लाइफ।
करेक्ट,
ऐसे करके जब ये पूरा चेंज हुआ, नो द वंडर वाज उसी साल वो पास हो गई।
वाओ,
उसकी मदर ने भी कहा कि आश्चर्य है कि हम इतनी मेहनत करते थे पास नहीं हो रही थी। दो मुख्य बात की जो उसकी जड़ होती है ना, वो जड़ को हम समझ ले तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है
जी।
और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे पास आए, तो वह इससे बड़े एकदम नम्र थे। इवन फोन करने से पहले भी SMS करेंगे कि कैन आई कॉल यू, उसके बाद ही वो फोन करेंगे, तो इतनी नम्रता थी। लेकिन चेहरे पे देखते तो उदासी थी।
ओके,
डिप्रेशन भी था। उनको यह भी लगता था कि भाई मैं अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ। बैंक में उनका अच्छा सा जॉब था, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मेरे साथ दूसरे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दूसरा मेरा कलीग 2 घंटे में पूरा कर देता है, वही पूरा करने में मुझे 6 घंटे लगते हैं।
करेक्ट,
इट मींस आई एम नॉट एफिशिएंट, है ना। तो ऐसी बातें उसने बताई ना। वाइफ भी बहुत कोऑपरेटिव थी, बच्ची भी एक थी बहुत अच्छी थी, फिर भी उसको अच्छा नहीं लगता था
जी
ना? तो पूरा करते करते कुछ सेशन के बाद ये समझ में आया, इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता है, परंतु वो काउंसलिंग के सेशन करते करते एक लेवल पर यह बात सामने आई कि उसके फादर की अचानक डेथ हो गई थी।
ओके,
शायद स्कूल में ही पढ़ता था तब अचानक फादर की डेथ हो गई। उसको कोई तकलीफ नहीं आई क्योंकि उनके अंकल्स ने बहुत मदद की। उसकी मदर भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आती थी, इन्होंने भी इमोशनली उनको बहुत सपोर्ट किया।
ओके,
तो उसने कहा इमोशनली या फाइनेंशियली मुझे कोई तकलीफ नहीं आई। तब मैं उसको पूछा कि अब जब फादर की डेथ हुई तो उस समय तुम्हारे मन में क्या विचार चले, प्रोमिनेंट थॉट कंटिन्यूअसली क्या चला। उसने तुरंत कहा कि भी उस समय 8-10-15 दिन मेरे मन में विचार चला कि मैं अकेला हो गया। नाउ नो दिस इज द रूट, आज भी वह उसका पीछा कर रहा है कि मैं अकेला हूं। ना सब कुछ है, इंटेलिजेंट है तब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, अच्छी सी जॉब मिली, लेकिन मैं अकेला हूँ, अच्छी वाइफ है, बच्ची भी है, फिर भी मैं अकेला हूँ। तो उसी से डिप्रेशन हुआ, उसी से फिर खुशी नहीं रही, तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते।
करेक्ट,
जब अलग अलग टेक्निक्स होती है कि जिसके द्वारा इस बात को पूरा रिमूव किया उसके माइंड में से कि तुम अकेले नहीं हो।
करेक्ट,
ना तब थे ना आज हो, तब भी तुम खुद ही कहते हो कि भी फादर की डेथ हो गई तो भी तुमको पता ही नहीं चला कि भी कैसे इतना पढ़ लिए।
करेक्ट,
है ना। इमोशनल सपोर्ट भी आध्यात्मिक संस्था से मिला, फाइनेंशियल सपोर्ट अंकल से मिला, तो तब भी सारे लोग आपके साथ थे, आज भी है। वो जब उसमें वो कन्विंस एक बार हो गया, वो मान्यता चेंज हो गई, तो उसके चेहरे पे रौनक आ गई।
वाओ,
और उसके डिप्रेशन की दवाइयां भी बंद हो गई।
वेरी नाइस।
तो नो लाइक दैट, इफ वी कैन अंडरस्टैंड द रूट एंड कैन डील विद दैट रूट, ऑल्दो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन उससे इतनी इफेक्ट होती है कि दवाइयां भी बंद हो सकती है। अधिकतर साइकेट्री में मानते हैं कि भी स्ट्रेस के लिए या डिप्रेशन के लिए दवाइयां लेते हो बंद नहीं हो सकती, जीवन भर लेनी पड़ेगी। परंतु प्रॉपरली अगर हम रूट कॉज को ठीक करें तो दवाइयां बंद भी हो सकती है।
वेरी नाइस डॉक्टर साहब, ये दोनों एग्जांपल से हम ये तो समझ गए कि हम रूट कॉज को हमें कैसे निकाल बाहर फेंकना है, लेकिन कोई और ऐसे एग्जाम्पल आप बता सकते हैं जिससे हमें पता चले कि हाँ सच में हम खुद भी अपना इलाज कर सकते हैं और खुद भी स्ट्रेस के साथ ट्रीट कर सकते हैं?
और रूट कॉज को या कॉज की बात करो, रूट कॉज को हम ढूंढ सकते हैं। क्योंकि ये ना वो दो एग्जाम्पल में वो बात क्लियर नहीं होनी है
जी।
और आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ।
हाँ जी।
मेरे सेमिनार में हुआ ना, एक लड़का था, उसने ये कहा कि मैं कभी बड़ों पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ, अपने आप करूँगा, परंतु बड़ों पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इसके कारण फिर अभी मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, फिर भी बड़े मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं।
okay.
क्योंकि मैं उनके पास नहीं जाता हूँ।
करेक्ट,
है ना। अब इसका सारा हम ढूंढ रहे थे तो फिर ये पता चला कि जब वो छोटा था तब उसके गाँव में एक बार कॉम्पिटिशन थी
जी।
कि अभी बेस्ट बच्चा कौन है उसको ढूंढना था। ऐसे देखो तो ऑलमोस्ट श्योर था कि ही इज द बेस्ट चाइल्ड। वो सभी एक्टिविटीज में, इंटेलेक्चुअली, पढ़ाई में और एक्टिविटीज में भी वो बेस्ट था
जी।
परंतु उसके दादा ही वहां पर जज थे।
ओके।
तो उसके दादा के सामने ये प्रॉब्लम आया कि अगर अपने पोते को कहेंगे कि ये बेस्ट लड़का है तो लोग कहेंगे कि तो पार्शियल
बायस्ड है।
हाँ, उसने अपने पोते को ही फर्स्ट कर दिया, तो इसलिए उसके दादा के सामने वो प्रॉब्लम आया और उन्होंने फिर जो सेकंड बच्चा था उसको फर्स्ट कहा और इसको सेकंड कहा।
ओके।
तो तब उसको शॉक लग गया।
ओके।
तो कंटिन्यूअसली मन में चला होगा कई दिनों तक कि अरे मेरे दादा ही मुझे फर्स्ट रैंक नहीं दे सकते तो कौन देगा, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। है ना, इवन इफ यू आर वेरी गुड, वंडरफुल, फिर भी ऐसे पार्शियलिटी होती है।
ओके।
No, your closed ones are not your own.
Correct.
No, जैसे ये belief system बैठ गई कि आपके नजदीकी लोग ही आपको support करने वाले नहीं है।
Correct.
तो देखो बस वो है, वो आज भी साथ में उसको haunt कर रहा है। Hard working है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बड़ों पर विश्वास नहीं रखता है।
Correct.
है ना, उनमें faith नहीं है उसे। तो इस प्रकार से एक event है ना, वो बहुत कुछ create कर सकती है। देखो और एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ।
हाँ जी।
कि भी ये ना अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वास्तव में तो एक्सपर्ट की जरूरत है, लेकिन फिर भी काफी हद तक व्यक्ति खुद भी कर सकता है
जी।
अगर उसको ऐसा पूरा समझ में आ जाए और थोड़ा वो इंट्रोस्पेक्शन करे तो खुद भी समझ सकता है।
ओके।
और एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, व्यक्ति को एक पेपर देते हैं।
हाँ जी।
उसमें पूरा कहते हैं कि अपनी ये वीकनेस लिखो
जी,
साथ में अपनी स्ट्रेंथ भी लिखो, उसके आधार से भी आप अपने जीवन को देखो
जी,
अपने जीवन को जज करो, क्या क्या इवेंट हुई, कैसे हुई, उसमें मेरा रिएक्शन क्या हुआ, उस समय मुझे इमोशंस क्या आए, और फिर आप ढूंढो, शायद मिल सकता है आपको भी
जी,
या तो काउंसिलर कैन हेल्प यू
करेक्ट
इन फाइंडिंग आउट दैट रूट थिंग।
बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब, हमने आज बहुत सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि अपने हमें अपना सेल्फ एस्टीम को बनाए रखना है, वो अगर बना रहेगा तो हमारे आसपास की चीज़ें ऑटोमेटिकली सही प्लेस पे आने लगेंगी। साथ ही साथ आपने जो एग्जांपल्स दिए हमें वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे हमारे रूट कॉज को जानने के लिए कि क्या है, किस तरह से हम अपने स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। दोस्तों आज हमने क्या जाना, जब हम बात करते हैं हमारे सेल्फ एस्टीम की, अगर वो हाई रहेगी तो ऑटोमेटिकली सारे सिचुएशंस प्लेस में आने लगेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि रूट कॉज क्या है स्ट्रेस का। जैसे ही हमने वो तीन एग्जाम्पल्स को जाना तो हम समझने लगे हैं कि कैसे हम अब उस स्ट्रेस से कोप अप करके आगे बढ़ सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।